ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
और उनकी स्तुति करने से हमें क्या लाभ हुआ? हम वो परमात्मा जिसे मनवाणी भी नहीं जान सकते, उसे ये मनवाणी से जानने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। तो ऐसी अतद व्यावृत्ति से श्रुति बता के भी चकित हो जाती है। अभी इतना सुनने के बाद हम चकित नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये किसके बारे में बोल रहे हैं? वो वाणी से भी निर्देशित नहीं है, फिर भी बोलने की चेष्टा, ये हमें चकित नहीं करेगी तो क्या करेगी? और जीवन में चकित होने वाला इससे ज्यादा क्या है? अरे भाई, आप यहां देखने को आइए, आप हैरान हो जाएंगे, इतना सुंदर दृश्य है। आप हैरान हो जाएंगे, इतना सुंदर श्रव्य है, इतना सुंदर है। इससे ज्यादा हो सकता है? उसे बताना, जो आपको ऐसा बताए ना, उसे बताना कि भाई देखो, उसे आप जहत अजहत समझाने में शुरू हो जाएंगे ना, तभी वो आपको पैर छू के निकल जाएगा। बोले कि मैं जो इतना सुना रहा हूं, उससे ज्यादा चकित करने वाला है तेरा विषय? बोले वो उतना सुनने के लिए रहेगा, ही वोंट बी देयर। और आपके आपको समय मिल जाएगा उसका नाम लेने के लिए। हाँ, ये समझाना शुरू ही कर देना, वो चला जाएगा अपने आप, और उसका कुछ नसीब होगा तो बैठ के सुनेगा और पार लग जाएगा। तो बोले श्रुति भी अभेद भाव से महिमा की स्तुति नहीं कर सकते हैं। हे परमात्मा, स कस्य स्तोतव्यः, कति विद गुण कस्य विषयः, पदे तू अर्वाचीन पतति न मनः कस्य वचः। हे परमात्मा, आप किससे जाने जा सकते हैं कि आप कितने गुण वाले हैं? तो भी भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आपके साकार स्वरूप में, देखिए आप, बहुत मजे की बात है, यहाँ बड़ी बड़ी अतत की बात की, सब का बात कर दिया, और अब कहते हैं कि भाई करना क्या है? भाई ये परमात्मा, ये अतत व्यावृत्ति से मिले हुई जो अहम ब्रह्मास्मि की ये जो भावना है, ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति कहाँ टिक सकती है? भाई आपके जो साकार स्वरूप जो है, उसी में ये अनुभूति को मैं रख सकता हूँ। देखिए, आपके पास कोई वैल्यूएबल कोई वस्तु होगी, कोई ऐसे पेपर्स होंगे, या आपके कोई भी चीज होगी जो बहुत ही वैल्यू रखती है, आपके पास जो भी आपका ज्वेलरी होगा, वो कहाँ रखेंगे आप? इधर उधर तो नहीं रखेंगे ना, रखेंगे कहाँ? कोई सेफ में रखेंगे ना, जो चीज बहुत महत्व की है उसे सेफ में रखी जाती है। तो ये अतत व्यावृत्ति से ये परमात्मा, अगर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण ये परमात्मा को धारण हो गए भीतर, तो उसे कहाँ रखना चाहिए? उसकी जगह क्या है? सेफेस्ट जगह कहाँ है? तो बोले कि परमात्मा, ऐसे आपके गुण को न जानने वाले आपके साकार स्वरूप में किसके मन और वाणी प्रवेश नहीं करते? यानी क्या कहना चाहते हैं कि मन और वाणी एट द मोस्ट प्रवेश कर सकते हैं तो आपके साकार स्वरूप में, यानी परमात्मा के साकार स्वरूप के बिना आपकी मन और वाणी को कहीं भी प्रवेश करने नहीं दीजिए। बहुत बड़ा इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि अतत जागृति से जो परमात्मा आपने प्राप्त किया है, जो अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति क्षण के लिए भी आपने सुनी, कान में गई, और जो थोड़ा भी आश्चर्य हुआ, वो आश्चर्य को साकार में संजो के रखिए। वहां वो इधर से उधर नहीं हिलेगा। बाकी ये शरीर मन बुद्धि के संघात में साथ को लेके, अहम बुद्धि से मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, ऐसा विचार किया तो वो अहम वृत्ति तिरोभूत हो जाती है, वो चली जाती है। एक बूंद पानी का आपके हाथ में आ गया तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे संभालने के लिए, जितना जल्दी हो सके आप समुद्र में जाके डाल के आइए वो बूंद को, तो ही वो बच सकेगा, नहीं तो वो बूंद को बचने की कोई शक्यता नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं कि मैं इतना जानता हूं तो भी आपके साकार स्वरूप में क्यों अनुग्रहित हूं, मैं क्यों आनंदित हो रहा हूं आपके साकार स्वरूप में मेरे मन और बुद्धि को, कि ये जानने के बाद मन और बुद्धि तो अपना कार्य करने ही वाले हैं, क्योंकि प्रारब्ध तक जब तक शरीर नहीं खत्म होगा मन और बुद्धि अपना कार्य करते रहेंगे, और जितना आप ब्रह्म को जानेंगे मन और बुद्धि इतने ही परेशान आपको करेंगे। वो कैसे भी करके वो परमात्मा मन से जानने वाला है ऐसा आपको मन बताता ही रहेगा, और ऐसा न हो इसीलिए जब मैं शांत हूँ तब आपके साकार स्वरूप में मन इधर उधर भटकता है तो तुरंत उसको साकार पकड़ा देता हूँ कि भाई तुझे देखना ही है ना, रूप देखना ही है ना, आंख मचलती है कि रूप को देखो, यहाँ परमात्मा तुझे दिखा दूंगा, तुझे रूप देखना ही है तो यही रूप देख, दिस इज दी ओनली रूप यू हैव नो चॉइस, यही देखो, तुझे सुनना ही है परमात्मा का नाम ही सुनो, तुझे बोलना ही है परमात्मा के ही नाम बोलो या चुप रहो वाणी को बोल देना। तो इसीलिए यहां कह दिया है कि जानने के बाद भी मेरे मन और मेरी बुद्धि ऐसे ही सात्विक रहे जब तक, ये देखिए ये अदृढ़ अपरोक्षानुभूति होती है, पहले थोड़ी देर के लिए लग जाता है, संतों के सानिध्य के साथ लग जाता है, परमात्मा की मूर्ति के सानिध्य के साथ लग जाता है कि मैं ये परमात्मा हूं, फिर छूट जाता है, नहीं हम प्रपंच शुरू कर देते हैं, कहां घुस जाता है हम लोग, हमें आश्चर्य होता है कि इतना सब सुनने के बाद मैं कैसे ये सोचने लगी, वो मुझे पता नहीं है ये मन ये काम कर रहा है, तो ये मन कहां से आ जाता है पता नहीं लगता, इसीलिए ऐसा मत सोच लेना, गलती मत करना कि एक बार ये सुन लिया मैं ब्रह्म हो गई तो सब कुछ हो गया, इतनी जल्दी होता होता तो करोड़ों साल से ये भगवद गीता ये उपनिषद पर यहां से ये मंच से और ऐसे आश्रमों तो कितने हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, वहां से सब वक्ता कितने घंटों तक बोलते रहते हैं तो पोर्शन खत्म क्यों नहीं होता है, हाँ पीएचडी और एमबीए का भी पोर्शन एक साल में या पांच साल में खत्म होगा, ये पोर्शन हजारों साल से चल रहा है, ये बोलना खत्म क्यों नहीं होता है, इसीलिए कि इतना सरल नहीं है और इतना क्लिष्ट भी नहीं है, करना क्या है हमारी जो अहम की वृत्ति जो है उसे हमें तोड़ते रहना है। तो मन और वाणी भी नहीं प्रवेश सकते। अब आगे कहते हैं कि हे परमात्मा, श्लोक नंबर 3, जिसके पास पुस्तक है आप उसका गान कीजिए, आप गाइए, सब लोग गाइए साथ में, मधुस्फीता वाचः श्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। बहुत सुंदर बात की है, हे प्रभो अभी परमात्मा की वाणी को क्या कह रहे हैं पुष्पदंत जी। अब देखिए, जिसे अभी आप सोचिए कि जिसे मन और वाणी से भी नहीं कहा जाता, वो उनकी खुद की भी क्या कोई वाणी हो सकती है? तो यहां कैसे कहा, मधुस्फीता वाचः परम अमृतम निर्मितः तवतः। वो एक पूरा भाषांतर देख लेंगे फिर सोचेंगे कि ऐसा क्यों कहा, और परमात्मा की वाणी को मधुर कहा और वाणी से नहीं जान सकते तो परमात्मा की कुछ वाणी भी नहीं हो सकती तो ऐसा क्यों कहा, वो वाणी है तो कौन सी है, अब जानिए कि वो वाणी कौन सी है परमात्मा की। कहते हैं, हे प्रभो मधु जैसी मधुर और परम अमृत समान अलंकार कृत आपकी वाणी कैसी है? तो कहा, मधुस्फीता वाचः परम अमृतम निर्मितवतः, ऐसी वाणी को निर्मितवतः, आपकी वाणी वो नहीं है, आप वो वाणी को निर्मित कर रहे हो। अब ये क्या कहा है, परमात्मा कौन सी वाणी को निर्मित करते हैं, वाणी का विषय नहीं है वो वाणी कैसे निर्मित कर सकते हैं, तो यहां कौन सी वाणी की बात की है? तो यहां वेद वाणी की बात की है। वेद वाणी यानी ये जो उपनिषदों में जो ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म का विशेषण विशेष रूप से ब्रह्म का कथन किया गया है, वो वाणी को हम क्या कहते हैं, अपौरुषेय वाणी जो है वो वेद वाणी के कर्ता हे शिव आप है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितव्यः, परमात्मा ये वाणी जो है ना वो परमात्मा के निश्वास रूप है, उसमें उनका कर्तृत्व नहीं है, कोई करने का भाव नहीं है। निश्वास निश्वसितव्यम, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितव्यम, याने देखिए निश्वास क्यों कहा है परमात्मा की वाणी को, या नाक में से निकलती है वाणी क्या परमात्मा की और उसमें से आवाज आता है तो बोले नहीं। आप श्वास ले रहे हैं, आप यहां बैठे, प्रवचन शुरू हुआ और 8 और 14 हुई है, तब तक आपने कितनी बार श्वास अंदर लिया और बाहर निकाला, कितनी बार लिया या नहीं लिया, कितनी बार निकाला और लिया? आपके खुद के श्वास है, आपको पता ही होना चाहिए। हाँ हाँ, पता ही नहीं है। मैं श्वास ले रहा हूं ऐसा यहां बैठे हुए कितने को याद आया था? हाँ, याने तो भी श्वास चल रहा था ना, तो बोले हाँ चल ही रहा है, क्या बोलते आप, चल ही रहा है, पता ही नहीं लगा। याने क्या, बहुत ही सहज, अत्यंत सहज। देखिए ये बड़ी क्रिया हो रही है, श्वास का जाना श्वास का निकलना बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये। हाँ, और फिर भी सहज, पूरा जीवन यहाँ तो प्राण वायु महाप्राण अंदर जा रहे हैं निकल रहे हैं तो भी क्या है, जीवन बन रहा है। हाँ, शक्ति मिल रही है तो भी क्या है, इतना सब कार्य ये एक श्वास अंदर जाने से और निकलने से हो रहा है, वो सहज है, सामान्य है। जाने के मुझे पता ही नहीं है ऐसा हमने कहा ना, तो बस ऐसे ही ये वेदवाणी जो है ये परमात्मा में से ऐसी निकली, कोई भी प्रकार का अप्रयत्नतः है, कोई भी प्रकार का प्रयत्न इसमें नहीं है, कोई भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं। पुरुष प्रयत्न से ये वाणी नहीं निकली गई और इसीलिए ये वाणी अमृत समान है। याने अगर ये वाणी का पान, ये वाणी का श्रवण, ये वेद वाणी का मनन चिंतन और निधि ध्यासन जो भी कर लेगा वो अमृत हो जाएगा। हाँ, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय तमेवं विदित्वा अमृतम पत्येति, तम एव, वो परमात्मा को जानने से ही अमृत मिलता है, वो परमात्मा को जानने से ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यद गत्वा न निवर्तन्ते, याने मृत्यु से जन्म से पार हो जाते हैं। आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छम तस्य कामाय शरीरम अनुस्वंजरेत, ये शरीर या अगले जन्म के शरीर में वो संतप्त नहीं होता, अगला जन्म ही नहीं होता है। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, उसका पुनरावर्तन नहीं होता है, पुनः आवृत्ति नहीं होती है। क्यों इतना सारा कहा है, ये वेद वाणी अगर जो आपने सुन ली तो वो अमृत हो जाता है, इसीलिए परमात्मा को कहा कि आपकी वाणी अमृत देने वाली है, अमृत करने वाली है। यानी यहाँ देखिए ये बहुत गूढ़ रहस्य हमें दे दिया है कि अमर बनने के लिए इतनी जड़ी बूटी दे काफी है, वेद वाणी को ग्रहण कर लो। जहां भी वेद वाणी कही जाती है ये वेद वाणी, वेद वाणी यानी ये वेद का अंत का भाग जो उपनिषद है वो अंतिम वाणी है, क्योंकि वहां उपनिषद में क्या है तो बोले उपनिषद में मात्र ब्रह्म ही एक प्रतिपाद्य विषय है सब उपनिषदों का, ये एक बात। और वो ब्रह्म मात्र प्रतिपादित नहीं है, वो ब्रह्म मैं हूं ऐसे जीव ब्रह्म ऐक्य के महावाक्य उपनिषद में आए गए हैं, और ये वेदवाणी अभी यही आपको अमृत बना सकती है। हे परमात्मा, हे शिव जी, ये वेदवाणी ऐसी जो है, आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा है कि सुनने वाला अमृत तत्व को पा लेता है। वाणी बोलनी भी नहीं पड़ती है, सुन के ही वो अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसी वाणी का प्रभाव है आपका। तो ऐसी वाणी आप उत्पन्न कर रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी की वाणी आपको आश्चर्यजनक कैसे लगेगी? आपकी ही वाणी अमृत देने वाली है तो ब्रह्मा जी की थोड़ी अल्प वाणी आपको क्या आश्चर्य करेगी? और फिर भी आपके गुण के वर्णन के पुण्य से, हे महादेव, मुझे पता है कि ये वाणी कम ही है, इतना पता है तो आप मुझे पूछेंगे कि तो तो आप भी क्यों वर्णन कर रहे हैं हे पुष्पदंत जी? तो कहा कि हे महादेव, मेरी वाणी को मैं पवित्र कर रहा हूं। ये बहुत समझने की बात है, सुनने वाले को भी और बोलने वाले वक्ता को भी ये समझने वाली बात है कि ये जो वाणी जो है, ये वाणी ने बहुत गलत कर्म कर लिए हैं, हाँ, गलत साक्षियां दी होगी आपने, हाँ, गलत बोला होगा, हमने असत्य भी बोला होगा, अच्छे के लिए बुरे के लिए वो भूल जाओ, कल ही हमने बोला कि अच्छे के लिए भी असत्य मत बोलिए। तो ये वाणी ने जाने अनजाने में, अज्ञान में बहुत ही असत्य कर दिया है। अब उसका रास्ता क्या है? ये वाणी को पवित्र मैं कैसे करूं? हम क्या करते हैं, कोई जगह को पवित्र करना है, या हमें स्नान करने का समय नहीं है और हमें मंदिर में जाना है, रास्ते में मंदिर पड़ता है और स्नान करने का समय नहीं है, और सुबह से हम घूम रहे हैं इधर उधर, तो क्या करेंगे भाई? पानी जो है अपवित्रम पवित्रम वा करके पानी को हम छोड़ देते हैं, और मंदिरों में नल की व्यवस्था तो पानी की व्यवस्था होती है, हाथ पैर मुंह धो लिया और मान लिया कि हम पवित्र हो गए और परमात्मा के पास चले जाते हैं। कैसी अपेक्षा से कि हे परमात्मा, नहाए हुए नहीं है, नए कपड़े नहीं पहने हैं, सुबह से बहुत सी जगह से घूम फिर के हम आए हुए हैं, फिर भी मान लीजिए इतना पानी छिड़काव किया तो मान लीजिए कि हम पवित्र हो गए, ऐसे आप हमें स्वीकार लीजिए। ऐसे ही हे परमात्मा, ये मन वाणी वचन और कर्म से बहुत सारा गलत हो गया, अब मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपका श्रवण कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, ये कोई भी विधि से ये शरीर मन बुद्धि के संगात को मैं पवित्र कर रहा हूँ, ऐसा आप मान लीजिए और मैं पवित्र, इस प्रकार मैं पवित्र हो रहा हूँ। तो ऐसे मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए ये स्तुति मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये स्तुति मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी क्या कि ये शरीर मन बुद्धि से पूर्व में कितने भी पाप अगर हो गए हो, बुरा असत्य हो गया हो, उसे सब आप भूल जाइए। अभी उसकी वाणी सुन रहे हैं ना, ये अतीत पंथानम, इतना एक पद भी, एक शब्द भी परमात्मा का, और इसीलिए कहा है ये सब महिमाएं जो है, ये भगवद गीता शंकराचार्य जी ने कह दिया है, आह, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारि समर्चाम, तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। आहा, क्या कह दिया? भगवत गीता किंचित अधीता, ओहो, थोड़ा भी भगवत गीता का पान कर लिया, अनुष्टुप छंद का चार चरण है उसमें से पहला पद भी सुन लिया कानों में तो हो इनफ, ये नहीं सुना तो गंगा जल का थोड़ा पान कर लिया तो भी इनफ है, ये भी नहीं हुआ तो मुरारी भगवान का एक बार भी नाम लिए लिया मुरारी इनफ। अब चिंता छोड़ दीजिए, उसकी बात यम नहीं कर सकते हैं, पर ये बात गलत नहीं है, इतना सोच लीजिए। परमात्मा को क्या करना है? परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास आओ ना तो सब कुछ झंझट चिंताएं छोड़ के आओ। हे परमात्मा, चिंताएं तो छोड़ के आओ, पर जो पूरा हो गया है उसका क्या? उसका आप कुछ प्रबंध पहले कर दीजिए। तो उसका प्रबंध मैं करता हूँ ना, मेरा नाम श्रवण कर लिया, मुझे याद किया तो तुम्हारे सब पूर्व पाप छूट गए हैं, अब क्या इतना झंझट है? इतना बता दिया आप, विश्वास, इसमें श्रद्धा और विश्वास यहाँ चाहिए। जो श्रद्धा निगमाचार्य वाक्येषु विश्वासः, निगम और आचार्य के वाक्य पे विश्वास रखिए कि ये हो ही जाता है, पर आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? है नहीं, तो हम बोलेंगे ही नहीं। यथे दांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, दूसरे श्लोक में कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, यहाँ प्रारब्ध कर्म को भी परमात्मा ने बचा के नहीं रखा, ऑल और नन। राजा जब देता है तो उसके महिमा से देता है, राजा ऐसी चीज का दान करता है जिसे लगे कि यह राजा का दान है, और ये परमात्मा तो सम्राट है, स्वराट है, राजाओं का भी राजा है, वो देगा तो क्या देगा आपको? उसकी महिमा जरा भी इचनी भी विचलित नहीं हो ऐसा देगा, आपके स्टेटस के मुताबिक ही आप किसी को गिफ्ट देते हैं। छोटे आदमी को देनी है तो भी आप उतनी ही गिफ्ट देते हैं जो आपके स्टेटस को बराबर फिट बैठे, आप उससे एक पैसा भी कम की गिफ्ट नहीं देंगे। क्यों? भाई मैं दे रहा हूं, तो यहाँ परमात्मा को भी होगा कि मैं दे रहा हूँ, और जब वो देने आए तो वो तो ये अमृत का ही दान कर रहा है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि देखिए अपवित्र तो मानना खुद को ठीक ही नहीं है, और अगर मान भी लिया तो रुजिनम संतरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः हाँ सर्वम ज्ञान प्लवे नैव। ये ज्ञान स्वरूप, ये परमात्मा की थोड़ी बात सुन ली तो ये सब पाप से आप पर हो जाएंगे, ऐसा निश्चिंत होके ऐसी हल्की उपाधि को इतनी हल्की करके उसका नाम ले लीजिए। खूब हल्का होना चाहिए। देखिए वो हवा भरते हैं ना आप, ये चौपाटी में आप जाइए, ये बलून में हवा भरते हैं, तो बलून में जब आप अपने मुख से हवा भरते हैं तो बलून ऊपर जाता है नहीं, उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर लाइट गैसेस हीलियम, हीलियम का वजन कैसा है, ये आपका ऑक्सीजन और प्राणवायु का जो वजन है उससे हीलियम कैसा है, बहुत कम वजन, हल्का वजन वाला है। हवा तो भरनी, क्राइटेरिया क्या है कि हवा तो भरनी ही है, पर कौन से टाइप की, कौन सी क्वालिटी की हवा, ऐसे ही फुग्गा ऊपर नहीं जाएगा। ये अपनी हवा से प्राणवायु से ऊपर नहीं जाएगा, उसमें विशेष वायु भरा तो वो बिना प्रयत्न ऊपर चढ़ने लगेगा। आप परमात्मा के नाम के वायु अपने मन में भर लीजिए। ये मन या हमारे जो ये बलून जो है उसके अंदर हवा कैसे जाएगी, कौन से नाम की जाएंगी, देखिए परमात्मा को, उसके सगुण साकार रूप को देखिए, बोलिए उसकी वाणी, नहीं बोलना है तो मन से उसे ही सोचिए, तो ये गैस भरता रहेगा परमात्मा का और आप अपलिफ्टेड हो जाएंगे, आप अपने आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, किसी की भी मदद लेने की जरूर नहीं पड़ेगी। यानी अपवित्रता का, पाप का भाव आप अपने मन से निकाल दीजिए, इतना ही भगवान पुष्पदंत जी को हमें कहना है। अब हे परमात्मा, इतना जानने के बाद जो आनंद हो रहा है वो आनंद, ये शरीर मन बुद्धि, ये परमात्मा को तद्रूप से जानने के बाद जो पीछे का जो अभी शरीर रहने वाला है, प्रारब्ध रहने वाला है, वो प्रारब्ध में मैं करूँ क्या, तो उसमें पुष्पदंत जी ने जो किया वो हम करेंगे तो ही हम सुख पा सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब शिव के सगुण शक्ति, सगुण रूप की, देखिए हमें समय ही नहीं मिला है परमात्मा के सगुण रूप की शक्ति को देखने का, हम सगुण रूप देख के हमारा छोटा मोटा काम करवा के चले जाते हैं हाँ, और वो तो उसका प्रभाव ही ऐसा है कि उसे देखने से ही काम हो जाता है, इसीलिए शक्ति भी मत डालिए उसमें, प्रार्थना करने की भी शक्ति मत डालिए। स्वामी दयानंद जी हमारे बड़े गुरु जी, एक बार प्रवचन था तो उन्होंने एक शब्द इतना सुंदर बताया, उन्होंने बोला कि अगर आप स्टेशन पे बैठे हैं और आपको चाय पीने का मन हुआ और चाय वाला यहां से यहां घूमता रहता है तो आप क्या कहते हैं, ए चाय, चाय बोलेंगे तो चाय वाला आएगा कि नहीं, चाय बोलने से चाय वाला पूरा आदमी आ जाता है, ग्लास आ जाता है, चाय आ जाती है और आप पीने भी लगते हैं, ओ बड़ा भूख लग गई ट्रेन में से हाँ। तो ऐसे ही सेड के वेन्यू से हरे कृष्ण, उसके आगे आप तकलीफ में आ गए बराबर, के कुछ हो गया है, ये इतना ये कुछ हो गया है, तो बोलने के पहले आप निर्देशन तो देंगे ना कि किसको, क्योंकि इतनी वैरायटी है, अभी कृष्ण भगवान और शंकर भगवान दोनों है तो बोलेंगे किसको बुलाता है, दोनों बैठे हैं तो नाम तो बोलना ही पड़ता है, तो बोले हरे कृष्ण, तो वेन्यू से हरे कृष्ण, चाय बोलने से चाय वाला पूरा आ जाता है, ऐसे हरे बोलने से हरण हो ही जाता है तकलीफ का, आगे बोलना ही नहीं है, आगे कुछ बचता ही नहीं है, कंप्लेन बचती ही नहीं है, इतने सजग हो जाइए परमात्मा के प्रति, हरे कृष्ण इनफ हो गया, उसके आगे आपकी कंप्लेन करने के लिए आप होने चाहिए ना कंप्लेन, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरे कृष्ण बोले तो हरण, एक पूरा शरीर मन बुद्धि का जड़ संघात भी चाय बोलने से आ जाता है तो हरे कृष्ण बोलने से वो नहीं आ ले सकते, आपका हरण नहीं कर सकते क्या, इतना विश्वास नहीं है, हरण तो हर बार होता है, विश्वास नहीं है। हरे कृष्ण बोलने के बाद हम अपनी रिकॉर्ड शुरू करते हैं ना, उसमें वो किया हुआ हरण भी फिर से आ जाता है, वी आर एडिंग टू अवर डिफिकल्टीज, वो तो जाती ही नहीं है, उससे ज्यादा आती है कि हाँ तुझे ये भी करना है तो चलो कर देता हूं हा? तो स्टॉप, प्रे एंड स्टॉप। तो यहाँ ये शिव क्या, ये सगुण परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 4। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तम् त्रिषुषु गुणभिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयाम रमणीम् विहन्तुम् व्याक्रोशिम् विददत इहैके जडदियः। अब कहा सगुण साकार के रूप का वर्णन अब पुष्प दंत जी क्यों करने लगे, क्योंकि जो अब क्या हो गया, अहम तत्व से अहम ब्रह्मात्मी रूप से अगर जब आपने परमात्मा को जान लिया तो लाल चश्मा पहनने से सब क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ऐसे अहम ब्रह्मात्मी वृत्ति आ गई तो सब क्या दिखाई देगा, सब अब परमात्मा दिखाई देगा भाई। सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म अब होगा, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि अब होगी। अब तो मजा है जीने की, जीने की मजा तो अभी है। हा? ये ब्रह्म तत्व कोई उदासी हो जाने की बात नहीं है, कोई गंभीर्य का विषय नहीं है। विषय गंभीर है पर गंभीर्य का विषय, गंभीर होने का विषय नहीं है। विषय भले गंभीर हो तो बोले कि हे परमात्मा अब मुझे पता चल रहा है, अब तक मैं समझ रहा था ये घर मैंने बनाया, ये मैंने करा, ये मैंने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जगत की मूल में ही उत्पत्ति किसकी है भाई, उत्पत्ति जगत की, उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण तो स्वयं आप है। कहां बताया है, तैतरीय उपनिषद में बताया है। मैं उपनिषद की बात जान रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, पर वो सुनी हुई बात अब मेरे समझ में आई कि सब आपका ही पसारा है, सब आप ही है। जहाँ देखूं वहाँ एक ही साईं, घट घट बसे अंतर्यामी, रंगवदूत जी ने लिखा है। उस काले का सभी पसारा छोड़ दिया माई संसारा, काहे अब तू शोक करे है। तो यही परमात्मा सब जगह है। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानी जीवन्ति यत् प्रयत्न विषम अभिविशन्ति इति। ये परमात्मा में से ही सब कुछ उत्पत्ति स्थिति और लय है। हे परमात्मा ये मैंने कब जाना, जब वो मेरी जीवगत बूंद थी, वो बूंद तेरे परमात्मा के तेरे ज्ञान सागर में आ गई तो ये बूंद समुद्र बन गई, और समुद्र बन के मैंने देखा कि ये सब परमात्मा मई ही है। पहले ये वो ब्रह्म बन जाइए ये तत्व, और फिर आपको लगेगा कि ये उत्पत्ति स्थिति और लय ये परमात्मा में से ही, ये मुझ में से ही होती है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो मुझे लगता है हे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाले आप ही एक है। तीन जो वेद है ये ऋग वेदांतर्गत यजुर्वेदांतर्गत अथर्व वेद है, उसको समाया लिया गया है। इसलिए तीन वेद बोलेंगे तो ऐसा मत सोचना कि भाई वेद चार है और तीन क्यों कहे हैं, उसकी चिंता मत करना, चारों आ गए हैं। तो सब तीन जो त्रयी वस्तु व्यस्तम तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु, बोले कि तीन वेद जो है वो उसमें वस्तु रूप से जो तत्व को प्रतिपादित किया है वो सत्वादि गुणों से लेकर तीनों शरीर में अलग अलग रीति से जो व्याप्त हुआ है वो आपका ही ऐश्वर्य है, और उसे मंद बुद्धि वाले कई खंडन करते हैं। क्या खंडन करते हैं कि ये परमात्मा ने, ये जगत उत्पत्ति स्थिति परमात्मा ने बनाई नहीं है, ये परमात्मा का काम नहीं है। ऐसे बोलने वाले जो मन मंद बुद्धि मीमांसक है उसका कोई भी काल में कोई भी लोग में कभी भी कल्याण नहीं है। विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत इहैके जड़ दिया, ये जड़ बुद्धि वाले जो है ऐसा आक्षेप वाला जो विधान करते हैं वो उसे मैं मंद बुद्धि वाले कहता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि हे परमात्मा, परमात्मा ने अपनी शक्ति माया से ये जगत की उत्पत्ति की, तो जगत की उत्पत्ति से आकाश से लेकर ये पुरुष तक हमारा ये जड़ शरीर मन बुद्धि का संघात है, वहां तक हम उत्पन्न हो गए। और यहाँ जो लिखा है कि तीन सत्वादि गुणों से अलग अलग शरीर बने, यानी क्या कि माया में जो है हमारा, हम जहां से जिसमें से बने हैं उसमें उसके गुण तो आने ही वाले हैं। तो माया के गुण क्या है, सत्व रजस और तमस माया के गुण है। तो ये सत्व रजस और तमस माया के गुण ये तीन शरीर में आ गए हैं, उसे तीन शरीर बने हैं। कौन से तीन शरीर बने हैं, बोले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो ऐसे शरीर बने हैं ऐसा जानने के बावजूद, ऐसा न जानते हुए कोई अलग तत्व से ये परमात्मा, ये जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसे जो मीमांसक जो मानने वाले हैं, कोई अणु में से कहते हैं, कोई क्षणिकवाद में से कहते हैं, कोई परमाणु में से कहते हैं, तो ऐसे जो कहने वाले मीमांसक है वो मात्र अल्प बुद्धि का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसी अल्प बुद्धि मेरी कभी न हो, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण मान रहा हूँ। ऐसी ही बुद्धि हमारी भी रहे, ऐसी ही परम पूज्य परमात्मा और गुरुजनों को प्रार्थना करते हैं। अब हम, आज 22 तारीख है, अब हम 24 तारीख को सुबह मिलेंगे, तब ये स्तोत्र जहाँ से हमने रखा है वहाँ से हम आगे उसका पाठ और स्तुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ह्यूं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।